नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों की उत्पादकता में सुधार के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल के कारण तटीय और डेल्टा जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। और पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने मिक्स डबल्स के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। श्री मोदी कल भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक चर्चाओं और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही सम्मेलन में गहरी रूचि दिखाई है। गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा से जुड़े प्रशासकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ओडिशा दौरे पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे थे। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9,80,00,000 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से किसानों को रोग मुक्त प्रमाणित रोपण सामग्री प्राप्त हो सकेगी और फलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना पौधों को स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देगी। इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निजी नर्सरियों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों और किसानों से जुड़े संगठनों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले के झांझरपुर में एक ऋण आउटरीच कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के स्वीकृति पत्र सौंपे। श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ऋण का संवितरण किया। इससे पहले उन्होंने स्व सहायता समूहों, विशेषकर जीविका दीदी की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। इन महिलाओं ने हस्तशिल्प, मिट्टी से बने बर्तन, मशरूम और अन्य विभिन्न कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन श्रीमती सीतारमण मधुबनी जिले के सौरत जाएगी, जहां वे मिथिला चित्रकला संस्थान में कारीगरों, महिला शिल्पकारों और मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों तथा शिल्पकारों के अलावा पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से भेंट करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम शुरू किया है, जो लखपति दीदी बनाने में मदद करेगा और प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत का विकास महिलाओं के नेतृत्व में होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब अपना नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और राष्ट्र अपने संकल्प से इसे हासिल करेगा। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत 2047 नई भारत 3.0 का विजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना, डिजिटल बुनियादी ढांचे तथा डिजिटल पहुंच को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच द्वारा सराहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईएमएफ के अनुसार निवेश और अवसर के लिए भारत पसंदीदा गंतव्य स्थल है। श्री धनखड़ ने कहा कि तंत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेही तय हुई है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को कम समय में बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को संसाधनों के एक संरक्षक की तरह काम करना चाहिए और संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। सरकार ने कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 7,43,00,000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों को 12 जीवन घातक बीमारियों की रोकथाम के टीके लगाए जाते हैं। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी। सुश्री पटेल ने यह भी बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप यू विन ने टीकाकरण सेवाओं की पहुंच और जागरूकता में सुधार किया है। यू विन में टीकाकरण सेवाओं की पहुंच कभी भी कहीं भी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा और QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं दी गई हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से चक्रवात फेंगल कल आधी रात से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात के आज रात पुदुचेरी पहुंचने का अनुमान है। इस बीच चक्रवात फेंगल के पुदुचेरी तट के निकट आने से पहले हल्की वर्षा हो रही है और समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। राज्य में अधिकारी पूरी तरह सतर्क है। सभी विभागों से पूरी तरह चौकस रहने को कहा गया है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम और जिला कलेक्टर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तटवर्ती और वर्षा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है और सामुदायिक रसोई खोली गई है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के करीब एक हफ्ते बाद भी महाराष्ट्र में सरकार के फैसले को लेकर अटकलें जारी हैं। महायुति गठबंधन के नेता मुंबई और दिल्ली में कई बैठकें कर रहे हैं। हालांकि अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ है। भाजपा और शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसम्बर को आजाद मैदान में होने की संभावना है। भारत ने बांग्लादेश से आग्रह किया है कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों के मामलों को लगातार दृढ़ता से उठाया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट है कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि इस्कॉन विश्व स्तर पर सामाजिक सेवा से जुड़ा प्रतिष्ठित संगठन है। जिनमय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारत को उम्मीद है कि ये प्रक्रियाएं न्यायसंगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से निपटेंगी। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज लखनऊ में हमवतन उन्नति हुड्डा को 21-12, 21-9 से हराया। इससे पहले मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने जोउ जी होंग और योंग जी यी की चीनी जोड़ी को 21-16, 21-15 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में आज शाम सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के शोगो ओगावा से होगा और दूसरी वरीयता प्राप्त प्रियांशु राजावत सिंगापुर के चौथी वरीयता प्राप्त जिया हेंग जेसन ते का सामना करेंगे। नाइजीरिया में कल नाइजर नदी के किनारे लोगों से भरी नाव पलटने से 27 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लापता हो गए। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि नाव पर लगभग 200 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं जो कोगी राज्य से पड़ोसी राज्य नाइजर जा रही थी। बचाव दल ने 27 शव निकाल लिए हैं और गोताखोर अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। नाइजीरिया के दूरदराज के इलाकों में नावों पर भीड़ आम बात है, क्योंकि खराब सड़क सुविधाओं के कारण लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।